ओम शांति। आदि देवी जगदम्बा सरस्वती का परिचय। ब्रह्मा कुमार दादा आनंद किशोर जी। दादा आनंद किशोर जी यज्ञ के आदि रत्नों में से एक थे। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद वे मधुबन में ऑफिस का सारा कार्य व्यवहार संभालते थे तथा बहुत चुस्त कार्यकर्ता थे। 21 सितंबर सन 1998 को उन्होंने नश्वर शरीर का त्याग किया। तो ब्रह्मा कुमार आनंद किशोर जी जगदम्बा सरस्वती का परिचय देते हुए कहते हैं, हमारे शरीरों को जन्म देने वाली लौकिक शारीरिक माता तो हरेक की अपनी अपनी है और आत्मा की दृष्टि से हम सबके माता पिता एक निराकार पारलौकिक परमात्मा ज्योतिर्बिंद शिव है, जो हमारे लौकिक माता पिताओं के भी माता पिता है। लौकिक और पारलौकिक माता तथा पिता का तो सबको पता है, यद्यपि आज मनुष्य को उस पारलौकिक माता पिता के नाम स्वरूप धाम कर्तव्य इत्यादि आदि के बारे में परिचय नहीं है, परंतु सृष्टि चक्र के 5000 वर्ष के कल्प में एक समय वह भी आता है जब हमें अपनी अलौकिक माँ मिलती है। यह अलौकिक माता हमें कल्प में केवल एक ही बार और थोड़े से समय के लिए मिलती है। इसी का नाम जगदम्बा आदि देवी माँ सरस्वती है। तो हमारे शरीरों को जन्म देने वाली लौकिक माता या शारीरिक माता तो हरेक की अपनी अपनी है और आत्मा की दृष्टि से हम सबके माता पिता या माता पिता एक निराकार पारलौकिक परमात्मा ज्योतिबिंदु शिव है, जो हमारे लौकिक माता पिताओं के भी माता पिता है। तो एक है लौकिक माँ और एक है पारलौकिक माँ। अलौकिक माँ कौन है? ब्रह्मा। तो एक बड़ी एक छोटी, दो हो गए ना, तो कितनी माँ हो गई? चार। और कितनी माँ है ब्राह्मणों को?
क्लास में बताया छह।
एक तो लौकिक माँ, दूसरा अलौकिक माँ। अलौकिक माँ में छोटा और बड़ा, बड़ी और छोटी, तो ये तीन हो गए। चौथा पारलौकिक माँ, पांचवा ड्रामा, छठवा भारत माँ, छठवा दादी माँ, सातवा धरती माँ। हाँ, नहीं, भारत और धरती तो अलग है। तो और भी कोई माँ है हमारे? देवी माँ। कौन सी देवी? सारी। राजमा। हाँ, सारी दादी है, दादी माँ हो गया ना।
बाद में हम प्रकाश
विद्या देवी को भी माँ बोलते हैं।
विद्या, हाँ, तो देवी सारी देवी जो है। फिर भारत माँ, भारत मतलब एक तो धरती और एक भारत की माता, भारत की माता है सारी, वो भी माँ है। भारत की जो भी माता है वो भारत, और एक माता भारत में रहने वाली माता है वो भी माता है। तो एक है लौकिक, एक है अलौकिक, एक है पारलौकिक।
भारत माता, धरती माता,
हम सबके माता पिता एक निराकार पारलौकिक परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव है, जो हमारे लौकिक माता पिताओं के भी माता पिता है। कल पांच संबंधों के बारे में बाबा ने कहा है। बाप से हमारे कितने संबंध है? आठ। मुख्य आठ संबंध है। मुख्य आठ में से मुख्य अगर निकाले जाए तो पांच, मुख्य पांच में से और मुख्य निकाले जाए तो तीन, तीन में से और निकाले जाए तो एक आठ कौन से बाप टीचर सदगुरु फिर माँ फिर भाई भगवान भाई भगवान भाई फिर बंधु बंधु हो गया ना भगवान भाई बंधु ही तो है फिर मित्र सखा फिर साजन फिर बेटा ऐसे आठ है एक नौवा भी हो सकता है वैसे तो बहुत है सारे ही संबंध है एक भी संबंध की कमी नहीं रहनी चाहिए बाबा ने कहा एक भी संबंध से वंचित रहे तो सारे कल्प में वंचित रह जाएंगे इसके लिए चेक करो कि किस संबंध की कमी है सर्व संबंधों का अनुभव कर लिया बाप से सर्व संबंधों का सहयोग लेना यही योग की नई परिभाषा थी कल एक सांप्रदाय है सूफी सांप्रदाय जिसमें वो स्वयं को प्रेमी समझते हैं और ईश्वर को प्रेमिका समझा जाता है जिसमें स्वयं पुरुष जो भी सूफी संत है वो स्वयं को पुरुष समझते हैं और परमात्मा को प्रेमिका स्त्री समझते हैं क्योंकि उनका ऐसा मान्य है मान्यता है कि स्त्री का प्रेम शुद्ध होता है स्त्री के प्रेम में वासना कम होती है स्त्री के प्रेम में समग्र समर्पण होता है इसके लिए वो स्वयं को पुरुष समझते हैं और परमात्मा को स्त्री ऐसा कम है इधर भारत में परंतु सूफी सांप्रदाय इस तरह की मान्यता है बंगाल में एक सांप्रदाय है सखी सांप्रदाय उसमें भी इसी तरह से समझा जाता है तो हमारे मुख्यतः आठ संबंध है बाप टीचर सदगुरु फिर माँ साजन सखा बंधु और बेटा आठों ही संबंधों का अनुभव अच्छा तो बाप के संबंध का तो अनुभव है बाप शिक्षक के संबंध का भी अनुभव है और सद्गुरु के संबंध का भी अनुभव है यह अनुभव उनको बहुत ज्यादा होगा जिनका अज्ञान का क्या अनुभव है उस आधार पर ये अनुभव होंगे जिन्होंने अज्ञान में बहुत गुरुओं को ढूंढा पर मिला नहीं या मिला परंतु कुछ ज्यादा प्राप्ति नहीं हुई उन्हें गुरु का संबंध ज्यादा आकर्षित करता है ज्ञान में आने के बाद अगर कोई व्यक्ति जिसने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की जिसका कभी कोई टीचर था ही नहीं और 50 साल की उम्र में उसे भगवान मिलता है शिक्षक का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है कोई अनपढ़ माता है उसको कभी किसने पढ़ाया ही नहीं है उसको बोला कि ये बाप तुम्हारा शिक्षक है शायद उसे अनुभव कम हो सकता है जरूरी नहीं होगा परंतु शायद या कोई पिता है बचपन से ही पिता ने बहुत तंग किया है किसी को और फिर भगवान मिल गया और कहा ये तुम्हारा बाप है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है दोनों बातें उसको तो उस आधार पर बाप टीचर सदगुरु फिर माँ के स्वरूप का अनुभव भगवान माँ कैसे अनुभव करेंगे क्या कहेंगे उस माँ से भक्तों ने अनुभव किया है ये भारत में देवी की पूजा होती है ना वो तो देवी को भगवान ही समझते हैं उसकी गोद में खेलते थे उससे हर चीज पूछ कर करते थे उससे बातें करना माँ के रूप में बेटे के रूप में कुमारों का अनुभव है देवेंद्र भाई बेटा शिव बाबा है मुश्किल है थोड़ा उसको बेटा बनाना साजन साजन भी इतना आसान नहीं है स्वयं को स्त्री समझना आत्मा स्त्री और वो पुरुष तो स्वयं को स्त्री उसे पुरुष समझना, साजन समझना, प्रेमी समझना, स्वयं को प्रेमिका समझना, स्वयं को आशिक समझना, उसको माशुक समझना, यह है मधुरा भक्ति कहा जाता है इसे शास्त्रों में। मधुरा जैसे मीरा और कृष्ण, जैसे राधा और कृष्ण की जो भक्ति है वो मधुरा भक्ति के इसमें आती है। महाराष्ट्र में भी ऐसे एक संत है गुलाब महाराज, वो भी उसी तरह के भक्त है कि जो स्वयं को स्त्री और कृष्ण को अपना प्रेमी समझते, प्रेमिका प्रेमी समझते, तो वो भी एक भक्ति है। और तो ऐसी आठ प्रकार की, ऐसी आठ में से मुख्य है पांच, भाई और बेटा और कौन सा निकाल दो बाहर, माँ को थोड़ा अगर बाहर कर दिया तो जो बचे हुए हैं वो पांच मुख्य है। उन पांच में से तीन मुख्य है बाप, टीचर, सदगुरु, तीन में से बाप एक मुख्य है। कल बाबा ने कहा तुम्हारा झंडा क्यों नहीं लहराता, नहीं लहराता क्यों नहीं, जैसे उस फंक्शन में रिहर्सल की आवश्यकता है, यहाँ रियलाइजेशन नहीं है। किस बात का रियलाइजेशन, चार सब्जेक्ट में रियलाइजेशन की कल बात हुई है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान में हर एक पॉइंट के अनुभवी मूर्त, वो तो उदाहरण दिया कौन सा, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, स्व का दर्शन, स्व को जानना अर्थात अनुभव स्वरूप में अनुभूति, ऑथोरिटी स्वरूप, अनुभवी स्वरूप, वो भी हर पॉइंट का अनुभवी स्वरूप, ऐसे नहीं एक दो पॉइंट का अनुभव स्वरूप, ज्ञान के हर पॉइंट के नशे में रहना। वो लोग तो क्या करते हैं, शास्त्रवादी रटते हैं, फिर भी स्वयं को शास्त्रों की ऑथोरिटी समझते हैं। तुम रटते नहीं हो, तुम रमन करते हो, तुम रटते नहीं हो, तुम मनन करते हो, तुम मनन करते हो, रमन करते हो और ऑथोरिटी स्वरूप हो, मैं मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी हूँ। तो वो है ज्ञान के सब्जेक्ट में ऑथोरिटी अर्थात हर पॉइंट का ऑथोरिटी स्वरूप, महारथी अर्थात हर शब्द के अनुभवी मूर्त, महारथी अर्थात जिसके मस्तक में स्मृति, स्मृति में विजय का झंडा सदा लहराता रहे, घोड़ेसवार अर्थात सुनते हैं सुनाने वाले, श्रोता स्वरूप है, वक्ता स्वरूप है परंतु अनुभवी स्वरूप नहीं है, उनका झंडा जो है वो खुशी की झलक और निश्चय की फलक से कभी लहराता है कभी नहीं लहराता, कभी खड़ा हो जाता है। तो ये वायु पर आधारित है वो, मतलब कभी विजय मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, सदा विजय नहीं है। इस बात को समझाने के लिए कितनी अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है, अति सुंदर भाषा का प्रयोग है ये। सीधा नहीं कहा कि तुम में से कोई विजयी हो, कोई कभी कभी विजयी हो, कोई तो बिल्कुल ही नहीं है, ऐसे शब्द नहीं बोले गए हैं। शब्द कैसे बोले गए हैं, भाषा का सौंदर्य है उसमें। कौन किसको देख रहा है, सेनापति देख रहा है, सुप्रीम कमांडर, कमांडर इन चीफ अपनी सेना को देख रहा है, एक तरफ खड़ी है राम की सेना और दूसरी तरफ खड़ी है रावण की सेना। सेनापति लड़ाई से पहले अपनी सेना को देख रहा है, क्या है मेरे सेनापति, कैसे है मेरे योद्धे, महारथी कौन है, घोड़ेसवार कौन है, प्यादे और पदाती सैनिक कैसे कैसे है मेरे। प्यादों को क्या देखा, प्यादों की तो अवस्था उससे भी नीचे, उनका तो झंडा लहरा ही नहीं रहा है, वो तो निश्चय की रस्सी खींच रहे हैं अभी, प्रयत्न में खूब लगे हुए, बाप दूर खड़े रहकर क्या कहते, सकाश देते, इशारा देते, पर कुछ कुछ तो ऐसे लगे हुए कि उन्हें फुर्सत ही नहीं है देखने की, टाइम ही नहीं है बाप के इशारों को कैच करने के लिए। कुछ कुछ फिर भी सफल हो जाते हैं परंतु मेहनत के बाद, परंतु उसमें फिर वो झलक और फलक नहीं है। जो भी हो चाहे मेहनत से या सहज, जब झंडा सदा लहराएगा और समय पर, तब पुष्प गिरेंगे किसके, प्रत्यक्षता के, किसकी प्रत्यक्षता, बाप की और बच्चों की, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वर्षा सी रौनक हो जाएगी, वर्षा सी रौनक हो जाएगी। तब बाप सहज साधन सुनाते हैं, किस लिए? ये झंडा लहराने का। कौन सा सहज साधन है? रियलाइजेशन, एहसास, अनुभव, अनुभूति, महसूसता। रियलाइजेशन अर्थात अनुभूति। सुनना सुनाना नहीं, तो सबसे पहला रियलाइजेशन ज्ञान, दूसरा योग। योग में सर्व संबंधों का अनुभव, एक भी संबंध से वंचित न रहना। चेक करो अब तक किस किस संबंध का अनुभव नहीं किया है। अगर एक भी संबंध का अनुभव नहीं किया है तो उसको करो, क्योंकि अनुभव की खान अभी मिलती है, अनुभव की खान अभी प्राप्त होती है। अभी नहीं तो कभी नहीं। सर्व संबंधों का अनुभव का रहस्य, रहस्य को जानो और सहयोग लेना। बाप तो बंधा हुआ है हर समय सहयोग अनुभव सर्व संबंध निभाने के लिए। हर संबंध का कार्य व्यवहार में अनुभव करना, इसी को योग कहा गया है। कल योग को इस तरह परिभाषित किया है कि सर्व संबंधों के अनुभवों में खो जाना। ये सर्व संबंधों के अनुभव में मगन हो जाओ तो इस पुरानी दुनिया के वातावरण से क्या हो जाएगा मीना सिस्टर? सहज उपराम हो जाएंगे। एक है दुनिया से भागना और अपने चित्त को उधर लगाना, पर जितना दुनिया से भागोगे उतना दुनिया और खींचेगी। इसके लिए दुनिया का चिंतन नहीं, इस अनुभव में मगन हो जाओ तो दुनिया स्वतः ही छूट जाएगी। तो सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा? पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज उपराम हो जाओगे। यह है योग की रियलाइजेशन। पहला था ज्ञान का, तीसरा है धारणा में क्या, एक एक गुण का, एक एक गुण का रियलाइजेशन, एक एक गुण का अनुभव। अगर सहनशीलता ली जाए तो सहनशीलता के गुण का अनुभव, उसके भी सारे स्वरूपों का अनुभव। उसमें भी चार लोगों से सहनशील है, एक के साथ नहीं है, क्यों? उसमें भी दस परिस्थितियों में है, इस परिस्थिति में नहीं है, क्यों? उसके ऊपर चिंतन। उसमें भी दिन समय के अमृत वेला है, दोपहर को है, शाम को नहीं है, क्यों? एक ही गुण है और उसके भी कितने सारे अलग 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 स्तर पर उसके रियलाइजेशन। तो एक एक गुण का रियलाइजेशन धारणा की सब्जेक्ट। और चौथा था सेवा के लिए, कहा बाबा ने कि नहीं कहा? कि तीन कह के छोड़ दिया? क्या कहा था? हाँ, सार में ऊपर वर्णन नहीं है कुछ भी। जब बाबा को बाद में याद आया होगा, अरे सेवा के लिए तो कहा ही नहीं, चलो इधर चिपका देते। लास्ट में ऐसे अनुभव स्वरूप बच्चों को, ऐसे ज्ञान की अथॉरिटी में रहने वाले बच्चों को, ऐसे हर गुण के रहस्य को अनुभव करने वाले ऐसे। एवर रेडी और ऑलराउंडर, ये भी चिंतन का विषय। इसकी विशेषता, इस सेवा की विशेषता में अनुभव स्वरूप। किसमें? एवर रेडी। क्या हम सेवा में एवर रेडी है? क्या सेवा में ऑलराउंडर है? या कोई सेवा दी गई तो हम कहेंगे ये तो मेरे से नहीं होगा, ये तो मैं नहीं कर सकता? तो आगे आगे क्या हुआ? अरे आगे का बोलो ना। नहीं मुझे याद नहीं कहाँ पे बोला ये। अच्छा अच्छा, वो तो ठंडी गर्मी तो अब तुमको सहन करना है, उसके लिए था वो। अच्छा, दुख सुख मान अपमान निंदा जय पराजय हानि लाभ सब कुछ सहन करना है। सुख तो सुख सहन करने की बात नहीं है, दुख को सहन करने की बात है। भूख सहन कर, खाने का बहुत सारा है, वो सहन करने की बात नहीं है, भूख को सहन करने की बात है। उसका अनुभव इसका अनुभव है? खटिया ना हो, जमीन पर सोने की बारी आ जाए तो तैयारी है। पूरा अकड़ जाएगी पीठ उसकी, तो इस पे सोने में तो क्या है, इसमें कोई अनुभव की क्या जरूरत है, अनुभव उसमें सोने के लिए चाहिए। हर प्रकार की तपस्या का हमें अनुभव,
एक महीने से बिस्तर छोड़ दिया
जरूरी है, बीच बीच में जमीन पर भी सोने का अभ्यास चाहिए, देखो तो क्या होता है, बीच बीच में थोड़ा गर्मी का भी अनुभव चाहिए, ऐसे ही नहीं कि बस बैठे और चालू करो फैन, देखो बिना फैन के क्या होता है, आने दो पसीना, मर नहीं जाओगे। अच्छा है, नेचर की ओर तो कहता है बहुत जरूरी है, पसीना आना चाहिए, ब्राह्मणों को पसीने का अनुभव ही नहीं है, पसीना आना चाहिए, आने दो पसीना और रगड़ो उसको ही शरीर पर, अच्छी बात है, जरूरी नहीं, क्योंकि है उसका अनुभव, उसका क्या अनुभव, जो नहीं है उसका अनुभव चाहिए। ये सब साधन जो है नहीं रहेंगे, इसके लिए साधना यह हमारी स्थिति, जो हमें बहुत सारी चीजें पता नहीं पर हम उस पर निर्भर है, कुछ नहीं होगा, वो नहीं रहेंगे ना तो हम और शक्तिशाली बनेंगे, वो है इसके लिए शायद हमारी शक्तियां कम है और हमें भी पता नहीं कि हमारी शक्तियां उस वजह से कम है, परंतु उसको अगर हटा दिया जाए, खाट खटिया सब हटा दो, आत्मा और शक्तिशाली बन जाएगी, सारे फैन कूलर और एसी हटा दो, ब्राह्मणों में अभी जितनी शक्ति है उससे कई गुना अधिक शक्ति बन जाएगी, सहन करने से सहनशीलता बढ़ती है, वो जब नहीं रहेगा वो तो समय की बलिहारी है, वो जब नहीं रहेगा तो मर मर के और जबरदस्ती होगा, वो तो मिल ही नहीं रहे और परेशान होंगे उसमें आत्माएं, 10 मिनट फैन नहीं है तो परेशान होते हैं, कितने कमेंट्स, कितनी बार लाइट, अच्छा चलो लाइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कितनी गर्मी है, ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है, योगी अर्थात अचल, कल कहा है बाबा ने 3 निश्चयों की बात बताई, बाप पर उसका वर्णन नहीं किया, स्वयं पर निश्चय, ड्रामा के निश्चय का बाबा ने कहा ना, अचल की अवस्था और हलचल की अवस्था, हलचल की अवस्था में भी कल्याण का अनुभव हो, विकराल समस्या भी शीतल बन जाए, उसमें भी अचल स्थिति का अनुभव, तो यही हलचल है सारी। किसी किसी को एसी चाहिए, एसी के बिना मजा ही नहीं आता, एसी है तो वो कम है, फिर थोड़ा और चाहिए, कभी संतुष्ट सुख साधनों से कभी कोई संतुष्ट हो सकता है, आज तक किसी का पेट भरा है क्या संसार में, कभी नहीं, इस शरीर को तपाना पड़ता है, जब तक इस शरीर को नहीं तपाएंगे साधनाएं नहीं होगी, ये केवल उनके लिए है जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है, बाकी लोगों के लिए नहीं, बाकी लोग करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, इसके लिए उनको जो चल रहा है वही चलने दो, पर जिन्हें आगे बढ़ना है, कर्ण बाबा ने प्रकृति जीत और माया जीत बनने की बात कही है, वो भी कैसे, एक सेकंड में, एक सेकंड में नहीं बने तो फेल, क्या क्यों किया तो फेल, अभी योग लगाते हैं, अभी याद में बैठते हैं, फेल, ये बाजी ही सेकंड की है, सेकंड में डायरेक्शन मिले, मास्टर बीज हो जाओ तो हो जाओ, सारा अनुभव चाहिए, जब तक वो अनुभव नहीं, गर्मी का अनुभव, इन सबसे प्रकृति जीता होता, सबसे बड़ी प्रकृति, प्रकृति जीत मतलब बारिश को रोकना नहीं है तुमको, छोड़ो, पहले ये प्रकृति है सबसे बड़ी, ये देह ही प्रकृति है, इसी को जीतना, जो देह के मालिक है वही प्रकृति जीत है, बाबा ने कहा है 5 तत्व वार करेंगे, 1, 5 विकार वार करेंगे, 2, 3 कल का वरदान, तमोगुणी आत्माएं वार करेंगे, पुराने संस्कार वार करेंगे, तो समेटने की शक्ति चाहिए, अभी अभी एक सेकंड में साकारी आकारी निराकारी ड्रिल का अभ्यास चाहिए, वो इधर वार करेंगे तो हम ऊपर, वो ऊपर वार करेंगे तो हम नीचे कल बोला ना साकारी आकारी निराकारी निर्विकारी, आत्मा इधर वार हम ऊपर, वो ऊपर वार हम ऐसे ऐसे कह रहा हूँ, दर्शन बाबा ने कहा ना साकारी आकारी निराकारी का अभ्यास करो।
ये पहुंच जाए तो पहले से तैयारी चाहिए।
तो प्रकृति जीत अर्थात पांच तत्व और माया जीत अर्थात पांच विकार वार ना करे, पांच तत्व आकर्षित ना करे। पांच तत्वों का आकर्षण अर्थात देह का आकर्षण, देह का आकर्षण केवल काम विकार नहीं, बहुत सारा है, उसमें खान पान भी आ गया है, उसमें वस्तु साधन वैभव सब आ गया, इसकी सुख सुविधाओं का कितना ख्याल रहता है, थोड़ा सा भी सुख सुविधा इसको कम मिले तो तुरंत संकल्प चलते हैं, तुरंत। बाबा ने कहा संकल्प भी चला क्या क्यों तो फेल। आज सब कुछ है कल कुछ नहीं होगा उसका अनुभव, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं का अनुभव अभी करना है, तभी वो कुछ नहीं का अनुभव तब होगा, अभी से वो अनुभव चाहिए। सुख सुविधाओं का तो बहुत, उसका क्या अनुभव की जरूरत है, वो तो है ही। तो सर्व ज्ञान में अनुभव स्वरूप, योग में अनुभव स्वरूप, धारणा में अनुभव स्वरूप, सेवा में अनुभव स्वरूप, ये तो केवल चार बताए, ऐसे बहुत सारे अनुभव है। आत्मा के स्वरूप का अनुभव, आत्मा के एक एक गुणों का में, उसमें भी आनंद स्वरूप आत्मा उसका अनुभव, फिर अशरीरी स्वरूप का अनुभव, फरिश्ते स्वरूप का अनुभव, बीज रूप स्थिति का अनुभव, कर्मातीत स्थिति का अनुभव, कर्म फल का अनुभव, विकर्म जो किए उसका जो फल किया वो भोगना का अनुभव, ये बहुत सारे अनुभव, ये कर्मों के संबंधित, आत्मा के संबंधित, परमात्मा के संबंध के अनुभव की बहुत बड़ी लिस्ट है। परमात्मा के से सुख का, शांति का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, ये लंबी लिस्ट, एक आत्मा से संबंधित अनुभव, परमात्मा से संबंधित अनुभव, ड्रामा से संबंधित अनुभव, जो हो रहा है उसमें कल्याण है ये अनुभव, हर बात का अनुभव, कर्म अकर्म विकर्म इसकी जो गति है उसका अनुभव, उसकी लिस्ट अलग, कर्म से संबंधित अनुभवों की लिस्ट अलग, ड्रामा से संबंधित कर्मों की लिस्ट, अनुभवों की लिस्ट अलग, परस्पर व्यवहार उसकी एक, उसका एक अनुभव, सेवा का अनुभव अपने ओर से, वो तो बाबा ने जो दो बातें छोड़कर, उसमें भी सेवा में खुशी का अनुभव, सेवा में दुआओं का अनुभव, पुण्य कर्म से प्राप्त हुई खुशी का अनुभव, तो ये सारे अनुभव 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 अनुभव, अनुभवी मूर्त बनना है, केवल सुनना सुनाने जो है ना वो घोड़ेसवार, केवल सुनना सुनाना, ये सुनाने वाले भी जो और सुनने वाले दोनों एक ही कैटेगरी के, सुनाने वाले श्रेष्ठ है और सुनने वाले कम श्रेष्ठ नहीं, दोनों एक ही तरफ, श्रोता स्वरूप वक्ता स्वरूप, बाबा ने कहा अनुभवी स्वरूप, सर्व अनुभव स्वरूप, शब्द कल जोड़ा है सर्व अनुभव स्वरूप, हर बात का अनुभव। रिलीजन इज रियलाइजेशन, विवेकानंद की परिभाषा है धर्म की, एक ही शब्द की, धर्म अर्थात अनुभूति, अनुभूति नहीं की अर्थात कुछ नहीं किया, किसकी अनुभूति, आत्मा की अनुभूति, ये अनुभव छोड़कर बाकी सब कुछ कर रहे वेस्ट ऑफ टाइम है। ज्ञान और योग के अतिरिक्त जो कुछ किया जाए इस संगम युग पर इस समय सब वेस्ट है, ये दो छोड़कर अपने आप को ज्ञान से भरपूर करना छोड़कर, अपने आप को योग की अनुभूति में भरपूर करना छोड़कर, ये जो कुछ भी है वो सब वेस्ट है, वो उसके पीछे केवल वासना छिपी हुई है, उसके केवल पीछे केवल इच्छा है, उसके पीछे केवल हद की मान और शान छिपा हुआ है, बस और कुछ छिपा नहीं है, ये एकदम कटु सत्य है इस समय का। इसके लिए सबसे पहले चेक करना है कि हमको ज्ञान और योग के अतिरिक्त और अपनी जो ड्यूटी है, जो सेवा है वो तो करना ही है, ये तीन के अतिरिक्त कहीं पर भी बुद्धि ना जाए, क्योंकि ये तीन के अलावा इतने सारे प्रलोभन है इस ब्राह्मण जीवन में, इतने सारे प्रलोभन है कि वो भी माया है, ये कौन समझाएगा और किसको समझ में आ रहा है, समझ में ही नहीं आता है कि ये भी माया ही थी, वो केवल एक सेंसेशन था जो उठा और सागर की लहर में सेंसेशन आया, उठा और विलीन हो गया, पर उस सेंसेशन में हमारा पूरा मैना छीन लिया, एक दिन छीन लिया, वो एक अल्पकाल की खुशी थी, उस अल्पकाल की खुशी ने वो कितना सा हमारा दिन छीन लिया पूरा, जो कि हमें अपने आप को ज्ञान और योग से भरपूर करना था, करने के आए थे और कर क्या रहे, हम अपनी वासनाओं के संसार में ही जी रहे बस, और हम उसको जस्टिफाई करते कि यह जरूरी था, कि जो भी है लक्ष्य केवल ज्ञान है बस, इससे थोड़ा भी नीचे आ गए थोड़ा भी तो समझ लेना वो नुकसान है। हर एक व्यक्ति एक संसार में जी रहा है और उसका संसार उसकी इच्छाओं के से निर्मित है। जैसे मैं कल कह रहा था ना, एक कुत्ता और एक बिल्ली। कुत्ता कहता है कि मैंने रात में बहुत सुंदर स्वप्न देखा, उस स्वप्न में मैंने देखा कि मैं बैठा हूँ, सोया हुआ हूँ और ऊपर से हड्डियों की बरसात हो रही है। अभी उसका संसार जो है उसी अनुसार उसे स्वप्न दिखते हैं, वो सोचता है कि हड्डियों की बरसात हो रही है। बिल्ली कहती है ये कोई स्वप्न है, मैंने बड़े शास्त्र पढ़े हुए हैं, सारे सारे दर्शन अध्ययन किए मैंने, मैंने आज तक कभी सुना नहीं, इतना तो मान लेती हूँ कि चूहों की बरसात हो सकती है, पर ये हड्डियों की कहाँ से हो रही है? किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है हड्डियों की बरसात, ये झूठा स्वप्न है तुम्हारा, चूहों की हो सकती है, उतना तो मैं मानती हूँ क्योंकि मुझे भी होता है। जो जिसकी वासना है वही उसका संसार है, हमारी जो इच्छा है उसी अनुसार हम संसार को देखते हैं बस। हम इस ज्ञान को भी, हमारी जो इच्छा है वो कितनी पूर्ण होती है उस अनुसार इस ज्ञान को भी, इस ज्ञान के आधार से भी हम अपनी वासनाओं और इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। सुविधाजनक, किसी को कुछ बनने की इच्छा है, किसी को प्रसिद्ध होने की इच्छा है, अब वो इधर आने के बाद में इस ज्ञान के द्वारा कहीं प्रसिद्धि का मार्ग मिलता है कि वो ढूंढता है। जो दबी हुई इच्छाएं जो होती है ना वो निकलती है बाहर सारी, एक साथ निकलती है। फिर जैसे एक गांव में बहुत सारे कुत्ते ही कुत्ते थे, इतने सारे कुत्ते थे सब भौंकते रहते थे सुबह शाम, तो उसने कहा एक बुजुर्ग कुत्ते को लगा ये कुत्तों के भौंकने वजह से ही हमारी बिरादरी बदनाम है दुनिया में। सबको समझाता फिरता है कि भौंकना बंद करो, ये भौंकना बंद करो, भौंकना बंद करो, बिल्कुल शोभा नहीं देता तुम, तुम्हारी वजह से हम कुत्ते सब बदनाम हो रहे, कोई उसकी बात नहीं सुनता। पर फिर धीरे धीरे सबको लगता है बेचारा बुजुर्ग कुत्ता है सही कह रहा है, तो सारे कुत्तों की एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है और सारे गांव के कुत्ते एक दिन डिसाइड करते हैं कि सुबह से लेकर पूरा 24 घंटे कोई भी नहीं भौंकेगा। अभी भौंकना इतना स्वाभाविक है उनका कि वो संकल्प करते कि हम में से कोई भी नहीं भौंकेगा, तो सुबह से लेकर एकदम गांव में सारे कुत्ते एकदम शांत, जब भी भौंकने की इच्छा होती एकदम अपने आप को दबा लेते और पूरा दिन शांत, पूरा पूरा गांव वाले आश्चर्य हो जाते ये क्या हो गया आज एक भी कुत्ता नहीं भौंक रहा है। सुबह दोपहर हो जाती है, फिर शाम हो जाती है, फिर रात को 12 बजते हैं, तो सारे कुत्ते इतने परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं और तो 12 घंटे और 6 घंटा बाकी है, अभी क्या करे अभी क्या करे, इधर उधर बिल्कुल पागल जैसे हो जाते। फिर धीरे से एक कुत्ता भौंकता है, एक कुत्ता भौंकता है, जैसे किसी को लगा एक सुनते हैं कि दूसरे ने भौंका, सारे एक साथ भौंकना चालू कर देते और सारा के सारा गांव उड़ जाता है ये क्या हो गया, भूकंप जैसे आ गया। जो इच्छाएं और जो वासनाएं दबी हुई रहती है वो जब एक साथ जागती है तो भूचाल आ जाता है। भारत की यही दशा है, देशों की यही दशा है, आज इच्छाओं और वासनाओं और काम को दबा के रख दिया। अध्यात्मवादी जितने भी अध्यात्मवादी है उनकी ये दशा है, जो ब्रह्मचर्य धारण कर लिया और समझा नहीं उसे और दबा दी वासना को और वो सारे आधी रात को उठते हैं और भागते हैं, ऐसी दशा हो जाती है। तो हमारा जो संसार है हमारी वासनाओं के आधारित है, हमारा जो संसार है हमारी इच्छाओं के से निर्मित है, वो इच्छाएं हम इस ज्ञान मार्ग में भिन्न भिन्न रीति से तृप्त करना चाहते हैं, जबकि हमारा लक्ष्य कुछ और है। मतलब हम उसकी इच्छा को समझे सबसे पहले, उसके लिए सारा फोकस इधर होना चाहिए। आज के मूल्य में बहुत अच्छा है, बाबा ने कहा केवल मुझे याद करो, एक आगे का वाक्य केवल मुझसे प्यार करो, वो प्यार तभी होगा उससे प्यार अर्थात उसके ज्ञान से प्यार, उसने सिखाए हुए योग से प्यार, उसकी श्रीमत से प्यार, सब कुछ उसका जो है उससे प्यार। तो ये तो कल की मुरली हो गई।